दिन भर, आज है 24 मई दिन गुरुवार। मैं हूं कुलदीप मिश्र। 13 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद आखिरकार तूतीकोरिन के स्टरलाइट कॉपर प्लांट पर लगेगा ताला।
द प्लांट इज क्लोज बिकॉज ऑफ एनुअल शटडाउन एंड वी आर वेटिंग फॉर क्लियरेंस फ्रॉम द कोर्ट एंड द गवर्नमेंट टू रीस्टार्ट द प्लांट।
पर बार बार विवादों में क्यों घिरती है वेदांता?
अगर आप मेरे से पूछेंगे इनका क्या कल्चर है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा शॉर्टकट, थोड़ा बहुत जुगाड़ जिसे कहते हैं, उस तरह का काम, उसके लिए ये जाने जाते हैं।
और उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु परीक्षण स्थल की सुरंगों को ध्वस्त किया।
We're journalists, we're not nuclear experts, so there was no one on site.
होगी और भी खबरें, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, मानसी दास से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ इसी साल के जून में होने वाली उनकी बैठक अब नहीं होगी। उनका कहना है कि इस वक्त इस बैठक का होना अनुचित है। ये बैठक 12 जून को सिंगापुर में होने वाली थी। इससे पहले उत्तर कोरिया ने अपने मुख्य और एकमात्र परमाणु परीक्षण स्थल पुंगेरी में मौजूद सुरंगों को ध्वस्त कर दिया है। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने यह कदम कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव कम करने के लिए उठाया है। इस घटना का गवाह बनने के लिए कुछ विदेशी पत्रकारों को पुंगेरी पर्वत ले जाया गया था। उत्तर कोरिया ने हाल में दक्षिण कोरिया और अमेरिका के साथ राजनयिक संबंध मजबूत करने के लिए अपने परमाणु परीक्षण स्थल को नष्ट करने की पेशकश की थी। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में अधिकारियों ने स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। स्टरलाइट कॉपर के खिलाफ तूतीकोरिन में विद्रोह प्रदर्शन मंगलवार सुबह उग्र हो गया था, जिसके बाद से अब तक यहां कुल 13 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है। जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि प्लांट को दी जाने वाली बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। बोर्ड का कहना है कि बीते 2 महीनों से ये प्लांट बंद था और वो बिना अनुमति फिर से उत्पादन चालू करने की कोशिश रहा था। इसके विरोध में मंगलवार को यहां हजारों लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि यह कंपनी पर्यावरण प्रदूषित कर रही है। भारत के केरल में नीपा वायरस के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई है और इसके बाद इस खतरनाक वायरस से मरने वालों की संख्या अब 11 हो गई है। फ्रूट बैट के जरिए फैलने वाले इस वायरस से मरने वाले व्यक्ति की उम्र 60 साल बताई जा रही है और ये उसी परिवार से हैं जिसके 3 सदस्यों की पहले ही नीपा वायरस के कारण मौत हो चुकी है। इस व्यक्ति के 2 बेटे और एक अन्य रिश्तेदार की मौत नीपा वायरस के संक्रमण के कारण हुई थी। उनके बेटों का इलाज करने वाली एक नर्स की मौत भी इसी संक्रमण से हुई थी। बताया जाता है कि इस वायरस के संक्रमण के कारण सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और दिमाग में सूजन आ सकती है। बीते साल यूक्रेन के ऊपर से गुजर रहे मलेशिया एयरलाइंस के एक विमान को गिराए जाने की जाँच कर रहे अंतर्राष्ट्रीय जांच दल ने कहा है कि इस विमान पर हमला करने वाला बुक मिसाइल रूसी सेना का था। हादसे में एम्स्टर्डम से क्वालालंपुर जा रही इस उड़ान में सवार सभी 298 लोगों की मौत हो गई थी। संयुक्त जांच दल ने कहा है कि ये मिसाइल कुर्स्क में तैनात रूसी सेना के 53वें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ब्रिगेड का था। जांचकर्ताओं ने यूट्रेश में आयोजित किए गए एक प्रेसवार्ता में कहा कि उन्होंने इस मिसाइल के पूर्वी यूक्रेन तक पहुंचने तक के रास्ते को खोज निकाला है। जांच दल के संयोजक फ्रेड वेस्टरबर्ग ने कहा कि जल्द ही विमान गिराने वालों का वो पता लगा लेंगे। हमें भरोसा है कि हम जांच को बेहतर तरीके से खत्म करेंगे। हमें और जानकारी चाहिए और हम लोगों से जानकारी मांग रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि जांच अब एक और कदम आगे बढ़ गई है और हम अब इसके लिए जिम्मेदार लोगों की तलाश कर रहे हैं। बीते सालों में हमने फोरेंसिक जांच की है और फोन पर हुई बातचीत की भी जाँच की है। साथ में इंटरनेट में मौजूद सभी जानकारी भी हमने इकट्ठा की है। हमें उम्मीद है कि हम दोषी की तलाश करने में सफल होंगे। जांच दल के संयोजक फ्रेड वेस्टरबेक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमेरिका ने घोषणा की है कि वो देश में होने वाले कार आयात पर आयात शुल्क लगाने वाला है। इस घोषणा के बाद एशिया की कई कार कंपनियों के शेयर लुढ़क गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने इस संबंध में जांच शुरू कर दी है कि क्या कार और ट्रक का आयात देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तो नहीं और कहीं इस कारण देश के युवाओं को मिलने वाली नौकरियाँ कम तो नहीं हो रही। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि चीन अमेरिका की इस योजना का विरोध करता है और चीनी हितों का वो रक्षा करेगा। बीबीसी समाचार।
श्रोताओं, अभी अभी मिल रही खबर के मुताबिक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ 12 जून को होने वाली प्रस्तावित मुलाकात को रद्द कर दिया है। ये बीबीसी हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं दिन की दूसरी सभा दिन भर। इस पर आपको विशेष कवरेज सुनाएंगे। सीधे इरम अब्बासी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वॉशिंगटन से। इरम, क्या जानकारी है इस खबर पर?
जी, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप से पहले नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं उन्होंने कहा था कि ये अमेरिका पर है कि वो हमसे मुलाकात या बातचीत करना चाहता है या फिर न्यूक्लियर हथियारों का शो डाउन चाहता है। उसके बाद हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक ट्वीट की जिसमें उन्होंने ये कहा कि लग ये रहा है कि नॉर्थ कोरिया से वो इस वक्त नहीं मिल सकते, लेकिन आज व्हाइट हाउस ने एक लेटर भेजा है नॉर्थ कोरिया के लीडर को जिसमें ये कहा गया है कि ये वक्त मुनासिब नहीं है कि आपसे मिला जाए। इसलिए जो सिंगापुर में 12 जून को मुलाकात होनी थी, बातचीत होनी थी, उसको पोस्ट कैंसिल किया जा रहा है। और उन्होंने ये भी लिखा है कि उम्मीद की जाती है कि आगे फ्यूचर में मुस्तकबिल में आपसे किसी दिन हम मिलेंगे। तो ये वो समिट है जिसको बड़े अरसे से, बड़े दिनों से, बड़े दो महीनों से बातचीत हो रही थी कि ये एक हिस्टोरिक मीटिंग होने जा रही है नॉर्थ कोरिया और अमेरिका के दरमियान, लेकिन अब वो नहीं हो रही।
जी, आज ही उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु परीक्षण वाली जो जगह है उसकी सुरंगों को धमाके से ध्वस्त किया, नष्ट कर दिया। और ऐसे कौन से हालात ये आखिर में आन पड़े कि ट्रंप को ये फैसला लेना पड़ा?
क्योंकि हम ये जानते हैं कि पहले नॉर्थ कोरिया ने जो है साउथ कोरिया से मिलने से इनकार कर दिया रिसेंटली, क्योंकि उनका ये कहना था कि अमेरिका ने अपने जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो साउथ कोरिया में बंद नहीं की। नॉर्थ कोरिया चाहता था कि वो एक्सरसाइज बंद करे अमेरिका ताकि बातचीत हो सके, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने अपना गुस्से का इजहार किया जब कुछ दिन पहले ही ये कहकर कि अमेरिका अगर बातचीत चाहता है तो वो ये फौजी एक्सरसाइजेस क्यों कर रहा है साउथ कोरिया में। उसके बाद ये एस्केलेशन शुरू हुई और उन्होंने नॉर्थ कोरिया ने जो माइक पेंस हैं वाइस प्रेसिडेंट उनके बारे में भी उनको भी कहा कि उनके पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है और अमेरिका जो है वो संजीदा नहीं है किसी भी बातचीत में। और उसके बाद हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो कि बहुत जब वो ईरान डील से निकले थे तो उन्होंने यही कहा था कि हम ईरान डील से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि ईरान अमन नहीं चाहता, लेकिन साथ ही साथ हम नॉर्थ कोरिया से भी बात कर रहे हैं क्योंकि नॉर्थ कोरिया चाहता है कि अमरीका से बातचीत हो। लेकिन और आपको ये भी पता होगा कि उसी वक्त जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो वो भी नॉर्थ कोरिया गए थे ताकि इस समिट जो कि जून में होनी थी उसके बारे में बातचीत कर सके, लेकिन अब हालात जो है ना तो नॉर्थ कोरिया की तरफ से ना ही अमेरिका की तरफ से साजगार है कि बातचीत की जाए।
चलिए, बहुत शुक्रिया इरम अब्बासी, हमसे जुड़ी थी सीधे वॉशिंगटन से। और पंकज प्रियदर्शी हमारे सहयोगी स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। पंकज जी, ये मसला इतना अप्रत्याशित हो गया है, लग रहा था कि संबंध सुधरेंगे और आखिर में जितनी अप्रत्याशित तरीके से उन्होंने घोषणा की थी कि हम किम जोंग उन से मुलाकात के लिए तैयार हैं, उतने ही अप्रत्याशित तरीके से उन्होंने वो पीछे भी हट गए।
कुलदीप, ये अप्रत्याशित तो नहीं लगता क्योंकि जिस तरह अभी रम ने बताया कि जिस तरह दक्षिण कोरिया के साथ जो अमेरिका सैनिक अभ्यास कर रहा था उसको लेकर उत्तर कोरिया ने आपत्ति जताई थी। उसके बाद एक और जो अहम बात थी वो अमेरिकी नेताओं की ओर से लीबिया मॉडल का जिक्र करना, उससे उत्तर कोरिया के नेताओं में काफ़ी नाराजगी आई थी कि जिस तरह लीबिया में हुआ क्या उस तरह वो करना चाहते हैं उत्तर कोरिया में भी, क्योंकि आपको पता है कि गद्दाफी के साथ क्या हुआ। तो उसको लेकर उत्तर कोरिया बहुत नाराज था और जिस की बयानबाजी हो रही थी, और आपने पूछा कि इसके बाद आगे क्या हो सकता है, तो जो व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं कुलदीप, ये बहुत ही शक्तिशाली स्टेटमेंट और बड़ा ही कड़ा आप कह सकते हैं, और लगता नहीं कि निकट भविष्य में कोई बात दोबारा हो पाए। वैसे कुछ भी हो सकता है राजनीतिक कूटनीतिक स्तर पर। उसमें एक लाइन ट्रंप की ओर से जो बयान जारी हुआ उसमें कहा गया है कि उत्तर कोरिया नेता को कि आप अपने परमाणु हैसियत की बात करते हो लेकिन हमारी परमाणु हैसियत इतनी शक्तिशाली और इतनी बड़ी है कि मैं खुदा से या अल्लाह से या भगवान से दुआ करता हूं कि ये कभी भी इस्तेमाल ना हो सके, यानी एक तरह से अपने स्टेटमेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से चेतावनी भी दी है उत्तर कोरिया, क्योंकि आप बार बार जो धमकी देते हो कि मैं परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर लूंगा,
जो पिछले दिसंबर वाली भाषा थी उस पर
उससे ये बहुत ही कड़ी भाषा है जो 12 जून की आप बात कर रहे थे। एक लाइन और भी उन्होंने लिखी है कि आपने बड़ा अच्छा किया कि हमारे 3 नागरिकों को रिहा कर लिया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, यह आपका जेस्चर बहुत अच्छा था और उम्मीद करता हूँ कि कभी हमारी बातचीत होगी, लेकिन इस माहौल में जिस तरह की नाराजगी आपके बयानों में दिख रही है, जिस तरह की शत्रुता और बैर की तरह आप बात कर रहे हैं, उसमें ये हमारे लिए मुश्किल है, बहुत ही अनुचित समय है कि हम आपसे बात कर पाए। तो फिलहाल कुलदीप दिखता नहीं है कि इस जिस तरह के कटु कह सकते हैं मोड़ पर और कटु बयानबाजी के बीच में इस तरह की बातचीत रद्द हो रही है, तो एक शांति स्थापित करने का कोरियाई महाद्वीप में जो दिख रहा था वो लगता है कि वो टल गया है।
जी श्रोताओं, आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने समूची दुनिया को चौंकाते हुए ये फैसला किया था कि उन्होंने किम जोंग उन के बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और लग रहा था कि ये मसला कुछ शांति प्रक्रिया की ओर बढ़ेगा। इसके बाद उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के नेताओं के बीच मुलाकात भी हुई थी और वो तस्वीरें सबने देखी थी जब दोनों नेता असैन्यीकृत क्षेत्र में मिले थे। बहुत शुक्रिया पंकज प्रियदर्शी का। हजारों की संख्या में लोगों का विरोध प्रदर्शन, पुलिस से झड़पें, 13 प्रदर्शनकारियों की मौत, इसके बाद आखिरकार तमिलनाडु के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तूतीकोरिन में स्टरलाइट प्लांट को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दे दिया। आज इस प्लांट की बिजली काट दी गई। इससे पहले अदालत ने कंपनी के विस्तार की योजना पर भी रोक लगा दी थी। आप जानते हैं कि तूतीकोरिन के थुतुकेडी में प्रदर्शनकारी इस कॉपर प्लांट का विरोध कर रहे थे और इस प्लांट का मालिकाना हक वेदांता इंडस्ट्रीज के पास है। आज ही वेदांता की ओर से इस मामले पर बयान जारी किया गया। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी विनीत खरे से बात की और पूछा कि वेदांता समूह की ओर से क्या कहा गया।
कुलदीप, वेदांता समूह के जो प्रमुख हैं अनिल अग्रवाल, उनका एक वीडियो जारी हुआ है ट्विटर पर, मैंने देखा है।
आई एम वेरी सैड टू हियर द इंसिडेंट व्हाट हैपेंड।
जो घटनाएं हुई कल की उससे वो बहुत दुखी हैं, उन्होंने उसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि परिवारों के साथ उनकी पूरी सहानुभूति है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि सालाना शटडाउन की वजह से उनका जो प्लांट है वो बंद है और वो अदालत और सरकार की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं ताकि इसे दोबारा खोला जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि वो इस व्यापार को जारी रखना चाहते हैं और उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो पर्यावरण और जो टूटीकॉन और तमिलनाडु के लोग हैं उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनकी इच्छाओं से और उनके विकास के लिए इस बिजनेस को जारी रखना चाहते हैं। इसके अलावा कुलदीप, ये जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं ई के पलानी स्वामी, ये काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जब से ये घटना घटी है ना ही वो टूटीकॉन के दौरे पर गए हैं जहाँ पर ये घटना हुई है, जो लोग मरे हैं उनको जो घायल हैं खासकर उन्हें देखने नहीं गए हैं, तो वो आज मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि हिंसा भड़क उठेगी। उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ राजनीतिक दल और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, वो जो प्रदर्शन है उसमें घुस गए हैं और उसे गलत दिशा में ले गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और उनसे पत्रकारों ने बार बार पूछा कि आप जो है उस इलाके में नहीं, क्यों नहीं गए हैं, तो जो मैंने रिपोर्टें देखी उसमें उन्होंने बोला है कि वहाँ पर सेक्शन 144 लगा हुआ था और इसलिए इसके कारण वो नहीं जा पाए, तो इसको लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन बहुत ही सीधा कोई जवाब सुनने को नहीं मिला उनसे।
पुलिस की फायरिंग पर उन्होंने आज एक किस्म से पहली बार सफाई दी। विनीत, ये भी बताएं कि जो तूतीकोरिन में स्टरलाइट फैक्ट्री की जगह है जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, जहां प्रदर्शन हुए, पुलिस ने गोलियां चलाई, वहां के हालात के बारे में अभी आपको क्या जानकारी
है? कुलदीप, हमारी बीबीसी तमिल की टीम है वहां पर टूटीकॉन में, प्रमिला है हमारी संवाददाता, उनसे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई, तो उन्होंने कुछ बताया कि पूरा जो इलाका है खाली पड़ा हुआ है, सड़कों पर लोग नहीं है, बस ट्रांसपोर्ट रुका हुआ है और दुकानें बंद हैं, पुलिस का प्रेजेंस है बिल्कुल भारी वहां पर चारों तरफ है। इसके अलावा ये एक अनकन्फर्म रिपोर्ट उन्होंने बताया कि लोगों को रात में गिरफ्तार किया गया है, ऐसा जो आंदोलनकारी हैं उनमें से कुछ का आरोप है। जो इलाके के जो नए कलेक्टर आए हैं संदीप नंदूरी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बता रही थी वो, और वो गई थी वहाँ, उनसे पूछा गया बार बार कि ये जो पुलिस फायरिंग हुई जिसमें लोग मारे गए, ऐसा जो फुटेज सोशल मीडिया पे गया कि भाई एक जो पुलिस वाला था वो एम ले रहा था बंदूक से जो क्राउड थे उस पर, इस बारे में क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस, तो इस पर सीधा जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि जो जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी बनी है वो जाँच कर रही है।
जानकारी दे रहे थे विनीत खरे। इस बीच एक खबर और चर्चा में है, इससे जुड़ी हुई, वो ये कि वेदांता समूह के प्रमुख अनिल अग्रवाल, जिनकी वेदांता में 71.4% की हिस्सेदारी है और जिनके बयान के बारे में अभी विनीत खरे आपको बता रहे थे, वो कंपनी से अपना पद छोड़ने की योजना बना रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स को एक साक्षात्कार में उन्होंने दिया है जो बुधवार को छपा, उसमें उन्होंने कहा कि कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर श्रीनिवासन वेंकट कृष्णन की नियुक्ति से उन्हें उनके चैरिटेबल कामों के लिए ज़्यादा समय मिलेगा, जिसमें खासतौर से वो वंचित समाज की महिलाओं और बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं। इस साक्षात्कार में उन्होंने स्टरलाइट प्लांट के ताज़ा विवाद का जिक्र नहीं किया और कंपनी की तरफ से भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ताज़ा विवाद की वजह से अनिल अग्रवाल पद छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। तो क्या अनिल अग्रवाल ने ये बात कहने के लिए जो समय चुना वो महज संयोग है या उसके इससे भी अधिक अर्थ हो सकते हैं? मैंने पूछा आर्थिक मामलों के वरिष्ठ पत्रकार M.K. वेणु से।
देखिए, ये कंपनी अब ग्लोबल कंपनी है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है और ये कई जो इस तरह की तो चीजें होती है, जिस तरह हुआ है चेन्नई में टुटिकोरिन में, इसमें कई बारी ये चीजें एक इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी की रेपुटेशन और कई बारी एक लायबिलिटी भी बन जाती है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में यूनियन कार्बाइड का हुआ था। हो सकता है कि कुछ अपनी कुछ उस तरह की लायबिलिटी से भी बचना चाहते हो कि भाई उन पे आँच ना है, कई बार उस वजह से भी पद छोड़ने की बात इस तरह बात होती है। तो ये अब देखना पड़ेगा लीगैलिटी इसमें क्या है, क्योंकि अभी तो अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ है, उसके बाद अब किस तरह की कोर्ट में कचहरी में लोग जाएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होगा। अभी तो केवल प्रेशर सरकारों पे है कि भाई ये पुलिस फायरिंग कैसे हुई थी।
जी, मैं यही पूछना चाह रहा था कि वेदांता समूह बार बार विवादों में फंसता क्यों है? क्या इनके काम की प्रकृति ऐसी है या ये इनकी अपनी लापरवाही है, ये कंपनी बार बार नियमों का उल्लंघन करती है या ये महज इनका दुर्भाग्य है कि बार बार ही फंसते हैं?
कई सारी चीजें इसमें जुड़ी हुई है। एक ये भी है कि हर एक कंपनी का एक अपना एक ब्रांड इमेज होता है, एक काम करने का तरीका होता है, एक कॉरपोरेट कल्चर होता है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इनका क्या कल्चर है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा शॉर्टकट, थोड़ा बहुत जुगाड़ जिसे कहते हैं उस तरह का काम, उसके लिए ये जाने जाते हैं। कोई बहुत ज्यादा कॉरपोरेट गवर्नेंस का भी इनका रेपुटेशन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही बढ़िया कॉरपोरेट गवर्नेंस और सब चीजें बिल्कुल जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उन सब चीजों की को पूरी तरह मद्देनजर रखते हुए काम करने वाली कंपनी है, ये मैं नहीं कहूंगा। ये इनकी मैं रेपुटेशन पे चल रहा हूँ। जैसे आपने देखा पीछे एक और बड़े कॉन्ट्रोवर्सी में फंसे थे 3-4 साल पहले, इन्होंने बीजेपी को और कांग्रेस को पॉलिटिकल डोनेशन दिया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट SCRA के का उल्लंघन करते हुए उसका वो इलीगल डोनेशन माना गया था, उस पर हाईकोर्ट ने ऑर्डर भी दिया और फिर उसको इसी सरकार ने बजट सत्र में 2016 के बजट सत्र में एक अमेंडमेंट लाके उसको रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे से बैकडेट करके उसको सही कर लिया, वो जो डोनेशन जो था, जो क्योंकि इंडिया में फॉरेन कंपनी जो डोनेट नहीं कर सकती इंडियन पॉलिटिकल पार्टी, और उस वक्त वेदांता फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में आती थी, 51% वेदांता का स्टेक था इस कंपनी में जो हिंदुस्तान वाली कंपनी में, तो वो कंट्रोल लंदन वाली कंपनी कर रही थी, तो उसमें भी ये लोग फंसे हैं, बार बार ही कंट्रोवर्सी में फंसते हैं। ये इनकी मतलब मैं कहूंगा कि आप किस्मत कह लें या आप फितरत कह लें।
सर, सरकारें इन पर मतलब सख्त एक्शन क्यों नहीं ले पाई? ये कोई विवाद आज से तो नहीं चल रहे हैं इनसे जुड़े हुए? आज प्रदूषण बोर्ड ने कहा कि हाँ हम प्लांट को अब बंद कर रहे हैं, 13 लोगों की मौत हो गई तब प्रदूषण।
हाँ, ये सारी ये बिल्कुल जो चीज आज कह रही है प्रदूषण वो पहले क्यों नहीं करा? इस देश में हर चीज के लिए क्या मतलब 1,000-2,000 लोगों को 20,000 लोगों इस केस में तो 20,000 लोग क्या सड़क पे आना पड़ेगा हर चीज के लिए?
वरिष्ठ पत्रकार M.K. वेणु को सुन रहे थे आप। कर्नाटक के चुनाव नतीजे आने के बाद से पेट्रोल पदार्थों के दामों में बढ़ोतरी लगातार जारी है और आज भारत में पेट्रोल की कीमतें अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गईं। इसे लेकर सियासत के गलियारों में भी हलचल है। मैंने पूछा BBC संवाददाता दिलनवाज पाशा से कि आज इस मसले पर क्या कुछ हुआ।
देखिए कुलदीप, जब से कर्नाटक के चुनाव नतीजे आए हैं लगभग हर दिन पेट्रोल पदार्थों के दाम बढ़े हैं और आज दिल्ली में पेट्रोल के दाम 77.47 रुपये प्रति लीटर हैं, जबकि मुंबई में ये कीमत 85.29 रुपये प्रति लीटर है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिटनेस चैलेंज ट्विटर पर स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी अपना फिटनेस वीडियो डालूंगा। इस पर जो आम लोग हैं उन्होंने उन्हें घेर लिया और कहा कि मोदी जी एक चैलेंज हम आपको देते हैं कि आप पेट्रोल की कीमत कम करिए। लोग हर मिनट कई ट्वीट प्रधानमंत्री को कर रहे थे और कई लोगों का ये भी कहना था मोदी जी हम आपको प्यार करते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि आप पेट्रोल की कीमत कम कर दें। ये जो फिटनेस चैलेंज है क्रिकेटर विराट कोहली ने शुरू किया था, तो राहुल गांधी ने कहा विराट कोहली को टैग करते हुए कि मुझे खुशी है आपके फिटनेस चैलेंज पर, लेकिन हम एक आपको चैलेंज देते हैं, आप तेल के दाम कम कीजिए, नहीं तो कांग्रेस जो है देश भर में प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी ने एक बयान भी दिया। उसके बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी इसी तरीके का ट्वीट किया। तो सोशल मीडिया पर जो ये बात शुरू हुई, आम लोगों ने चैलेंज किया नरेंद्र मोदी को, उसके बाद इसने राजनीतिक रूप ले लिया।
कि आप सुबह से इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या भाजपा की तरफ से या सरकार की तरफ से किसी प्रवक्ता की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया आई है?
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान चल रहा था कि पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाने के लिए जीएसटी पैनल में ले जाने की बात चल रही है। नितिन गडकरी का एक बयान चर्चा में था जो उन्होंने एक दो दिन पहले दिया कि पेट्रोल के दाम कम करने से जो बाकी समाज कल्याण की योजनाएं हैं उनके लिए फंड की किल्लत हो जाएगी। आज अभी तक तो मैंने नहीं सुना है बयान। अगर हम बात करें पेट्रोल के दामों की, तो हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भारतीय मुद्रा के मुकाबले 25 रुपए प्रति लीटर कम है, और नेपाल और भूटान जो 100% भारत पर निर्भर हैं पेट्रोल उत्पादों के आयात के लिए, वहां पर भी दाम भारत से कम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले कुछ दिनों में कीमतें बढ़ी हैं। आज मैं कुछ बिजनेस रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उनमें कहा गया है कि ये कीमतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। लेकिन हमने ही बीबीसी ने भी एक खबर की थी, विश्लेषण किया था, कल ही हमने प्रकाशित की थी कि सिर्फ दिल्ली में अगर पेट्रोल के एक लीटर पर बात की जाए तो 95% प्रति लीटर पेट्रोल पर टैक्स लगता है। तो एक ये बड़ा सवाल है और ये बहस शुरू हुई है, सोशल मीडिया से बहस शुरू हुई, अब इसने राजनीतिक रंग ले लिया है, और अब देखना यह है कि बीजेपी बोलकर प्रतिक्रिया देगी या पेट्रोल के दाम कम करके।
दिलनवाज पाशा को सुन रहे थे आप।
तो आप बताइए सोनाली, तो हमने गर्ल्स ने
सो अदला रेस्ट्रिक्टेड
हाली भी बंदियां दी मोनोपोली ओदे थे।
महिलाओं के नजरिए को कितना महत्व देता है मीडिया।
अगर रेप होता है तो आप लोग सारे मतलब न्यूज चैनल वाले रेप को ही एकदम चला रहे हैं और मतलब मेंटली आप लोग एकदम प्रेशराइज कर देते हैं।
क्या ये आवाजें मीडिया तक पहुंचती हैं?
मैं क्राइम रिपोर्टिंग करना चाहती थी, बट मेरे को बेसिकली बोला जाता है क्राइम लड़कियों के लिए नहीं।
सुनिएगा छात्राओं के मन की बात, मेरी यानी दिव्या आर्य की विशेष पेशकश, शनिवार 26 मई शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम में बीबीसी शी बदले नजरिया।
और अब वक्त है आपकी राय का।
आपकी राय, नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का।
और मेरा सूर्यांशी पांडे।
सूर्यांशी पांडे साथ में है, उनके पास चिट्ठियां हैं, मेरे पास भी कुछ चिट्ठियां हैं आज। अगर आपकी इजाजत होगी तो मैं भी पढ़ूंगा, लेकिन शुरुआत आप कीजिए।
सीतामणि जिला से लिखते हैं विजय कुमार श्रीवास्तव, नए श्रोताओं के लिए बीबीसी में कोई जगह नहीं है, फिर भी मैं पूर्ण आशा एवं विश्वास के साथ ये पत्र लिख रहा हूं।
नए श्रोताओं का तो हम स्वागत करते हैं, मतलब पलक पावड़े बिछा कर।
पहले वो 7 बार पत्र लिख चुके हैं, लेकिन वो एक बार भी वो पत्र जो है
शामिल नहीं हुआ। ये तो भाई हमारी गलती है। इनका दोबारा नाम बताइए।
हाँ, इनका नाम है विजय कुमार श्रीवास्तव।
अब आपकी चिट्ठी शामिल हो गई है, और अब इस आलोचना को थोड़ा सा दरकिनार कर दीजिए कि नए श्रोताओं के लिए जगह नहीं है। एक पोस्ट कार्ड हमारे पास आया है जिसे मैं पढ़ देता हूँ। ये लिखने वाले हैं इंद्रजीत मिश्र, जयमोहरा शिवपुर सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। लिखते हैं, मैं 78 साल का हूँ, बीबीसी में ओंकार नाथ श्रीवास्तव के समय से सुन रहा हूँ, सन याद नहीं है, पत्र पहली बार लिख रहा हूँ। तो 78 साल के श्रोता भी हैं और आप भी हैं। इन्होंने लिखा है कि लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस ने पूरे सत्र को चलने नहीं दिया, जबकि कांग्रेस के हर सवाल का जवाब देने के लिए सरकार तैयार थी। उसके बारे में आप लोग जनता के समक्ष कभी कुछ पेश नहीं किया। देश की जनता का कितना रुपया बर्बाद हुआ ये आप जानते हैं? तो ये सवाल इन्होंने किया है इंद्रजीत मिश्र जी ने। तो जब ये संसद का सत्र चल रहा था, उस वक्त किसी न किसी बहाने से ये बहस हमारे कार्यक्रम में इसको हमने कवर किया था, लेकिन आपने चिट्ठी लिखी है और इसी बहाने आपने चिट्ठी लिखी। हाँ। तो हमें तो खुशी है कि आप अगली बार भी चिट्ठी लिखेंगे ऐसा लगता है।
ये जो है ये पत्र, तो इनकी लिखाई देखिए कितनी
बहुत सुंदर है। हमारे पुराने श्रोता है विष्णु वर्मा, ग्राम एवं पोस्ट ककोली, फैजाबाद उत्तर प्रदेश,
और इन्होंने इस बात का जिक्र किया हुआ है कि हम निवासी का जब भी जिक्र करते हैं तो उनको नागरिक के तौर पर उनको जो है बोलते हैं, लेकिन ग्रामीण क्यों नहीं बोलते?
नागरिक को सिटीजन क्यों कहते हैं? हाँ। क्योंकि सिटी से, हाँ, नगर से और सिटी से उसका लेना देना है। हाँ। ग्रामीण क्यों नहीं कहते? हाँ। तो विष्णु वर्मा जी, दरअसल नागर सभ्यताएं, मुझे ऐसा लगता है कि जो चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, ये सब नागर सभ्यताएं थीं, इसलिए शायद उससे नागरिक नाम पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो देहात में रहने वाला है, गांव में रहने वाला है, वो नागरिक नहीं है, वो भी नागर सभ्यता का हिस्सा है। एक ईमेल मैं लेना चाहता हूँ, ये है अभिषेक आनंद। लिखते हैं, वैश्विक तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्याओं जैसे कि गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, पर्यावरण इत्यादि का विश्लेषण करें। आपका सोशल और पॉलिटिकल कवरेज अद्वितीय है, बस थोड़ा इकोनॉमिकल इश्यूज यानी आर्थिक विषयों को और बाजार पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। दूसरा इनका सुझाव है कि बीबीसी हिंदी केवल न्यूज व्यूज एनालिसिस मात्र नहीं, आधा अंग्रेजी आधा हिंदी में लिखा है इन्होंने, हम लोग इससे अच्छी हिंदी भाषा भी सीखते हैं, यानी बीबीसी से। अच्छी भाषा से मेरा मतलब न केवल उचित शब्द और व्याकरण बल्कि स्वर और व्यंजनों के सही उच्चारण से भी है। इन्होंने हमारे किसी सहयोगी की समाचार सुना जिसमें क्ष और स के उच्चारण पर बहुत साफ साफ ध्यान नहीं दिया गया है। ये हम मानते हैं कि कुछ हमारे जो साथी हैं उनको उच्चारण की अभी थोड़ा सा कमी महसूस हो रही है, क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, लेकिन उनके उच्चारण पर और उनकी पत्रकारिता पर आप ध्यान जरूर दीजिएगा, उसमें आपको बेहतरी मिलेगी।
जो ईमेल आया है ये आशुतोष कुमार पांडे ने भेजा है आरा बिहार से, और ये लिखते हैं कि जब एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई तब आपने खबर किया कि रोहिंग्या मुसलमानों ने हिंदुओं की हत्या की है, आप किसी रिपोर्ट को ही समाचार कहेंगे तो उस अमुक संस्था और बीबीसी में क्या अंतर रह जाएगा?
पहले तो आशुतोष कुमार पांडे जी के सवाल का जवाब दे दें कि ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है इससे बहुत पहले नितिन श्रीवास्तव बांग्लादेश भी गए थे और रखाइन प्रांत यानी म्यांमार भी गए थे, और शायद सबसे पहले उन्होंने इस बात को रेखांकित किया था कि वहाँ हिंदुओं के साथ भी ज्यादती हो रही है, ये उस रिपोर्ट में आया था। हत्या की बात जहाँ तक है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल के लोगों ने जाकर के वहाँ पे छानबीन की और वो रिपोर्ट जब जारी की उसके आधार पर हमने रिपोर्ट की थी, और ये अक्सर होता है, दुनिया के तमाम मीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस तरह की बात करते हैं। आगे क्या लिखते हैं?
आगे लिखते हैं कि इनका ये मानना है कि अभी दिल्ली के एक स्कूल के छात्राओं को फरमान जारी किया तो बीबीसी के ब्रा सेक्स पीरियड्स गिरोह सक्रिय हो गए, और उन्होंने कहा कि ब्रा पर तो एक लंबा लेख भी खिंच गया, तो क्या रोजगार के सवाल ज्यादा अहम नहीं है, जबकि इन सब सवालों पर कोई प्रतिक्रिया या कोई लेख लिखना उन्हें शायद।
हाँ, ये आशुतोष कुमार पांडे जी, हमको दरअसल अपने नजरिए से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी चीजें गलत नजर आएंगी, अच्छी नजर नहीं आएंगी, गैर जरूरी लगेंगी मर्द के नजरिए से देखेंगे, लेकिन महिलाओं के नजरिए से देखें तो शायद इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई बात नहीं हो सकती है कि उनको माहवारी के दौरान किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, महिलाओं को अपनी बॉडी के लिए कितना शर्मसार होना पड़ता है। वो हम बार बार इस तरह की खबरें इसीलिए करते हैं ताकि उस बात को सामने लाया जा सके। तो रोजगार के सवाल पर भी हम लोग कवरेज करते रहते हैं, लेकिन आप जैसे श्रोताओं की हमें बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि आप हमारी कमजोरियों की तरफ भी ध्यान दिलाते हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहरहाल समय भी अब कम है, तो चलते चलते पता बता दें। पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो hindi.letters@bbc.co.uk पर लिखें।
नमस्कार।
अब समय है खेल समाचारों का। इंदु पांडे स्टूडियो में मौजूद हैं। इंदु जी, क्या हो रहा है आज खेल की दुनिया में?
खेल की दुनिया से हम लेकर के आए हैं कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली अब सरे के लिए काउंटी क्रिकेट नहीं खेलेंगे। विराट कोहली को 17 मई को आईपीएल के मैच में फील्डिंग के दौरान गर्दन पे चोट लग गई थी, तो अब बीसीसीआई ने यह साफ कर दिया है कि कोहली सरे के लिए काउंटी क्रिकेट नहीं खेल सकते। इस बीच वो भारत में रह के अपनी चोट का इलाज करवाएंगे। और दूसरी तरफ आज सोशल मीडिया पे भारत और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कैप्टन विराट कोहली ने ही कहा है कि वो इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सत्र में आरसीबी के नॉकआउट चरण में जगह नहीं बना पाए, जिसके लिए वो तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं, और ये भी कहा कि उनकी टीम अगले सत्र में वापसी ज़रूर करेगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आरसीबी की टीम 14 में से 8 मैच गंवाने के बाद 8 टीमों की लीग तालिका में छठे स्थान पर रही। टीम को अपनी कमज़ोर गेंदबाजी, आक्रमण और बैटिंग में निरंतरता की कमी का खामियाजा भुगतना पड़ा, और कोहली और एबी डिविलियर्स पर काफ़ी निर्भर रही ये टीम।
बहुत शुक्रिया इंदु जी। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ इसी साल के जून में होने वाली उनकी बैठक को रद्द कर दिया है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने अपने एकमात्र परमाणु परीक्षण स्थल पुंगेरी में मौजूद सुरंगों को ध्वस्त कर दिया था। दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में अधिकारियों ने स्टरलाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट को तुरंत प्रभाव से बंद करने के आदेश दिए हैं। भारत के केरल में नीपा वायरस के कारण एक और व्यक्ति की मौत हो गई है और इसके बाद इस खतरनाक वायरस से मरने वालों की संख्या अब 11 हो गई है। बीते साल यूक्रेन के ऊपर से गुजर रहे मलेशिया एयरलाइंस के एक विमान को गिराए जाने की जांच कर रहे अंतर्राष्ट्रीय जांच दल ने कहा है कि इस विमान पर हमला करने वाला बुक मिसाइल असल में रूसी सेना का था। अमेरिका ने घोषणा की है कि वो देश में होने वाले कार आयात पर आयात शुल्क लगाने वाला है। इस घोषणा के बाद एशिया की कई कार कंपनियों के शेयर लुढ़क गए हैं। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ दिन भर की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात कल सुबह नमस्कार भारत में होगी। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया देवाशीष ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया प्रशांत चहल ने। कार्यक्रम सुन रहे थे आप मुझसे यानी कुलदीप मिश्र से। नमस्कार।